विक्रेषण की रचना अश्विनी कपूर ने 1975 में की थी, जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। विक्रेषण एक युवा लेखनी का एक वृद्ध दंपत्ति की दिनचर्या को चित्रित करने का प्रयास है। उपन्यास के मुख्य पात्र साधुराम व शांति अपने आज में अकेले दूर पंजाब के एक शहर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह से शाम तक वे अपने बिखरे क्षणों को चुन चुन कर दिन बिताते हैं। निराशावाद अपनी चरम सीमा तक जब पहुंचता है तो पात्रों के संस्कार प्रबल होकर उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति असहाय बनता है अपनी अकर्मण्यता के कारण। इस उपन्यास के पात्र साधुराम व शांति अकेले होकर भी असहाय नहीं, निराशा के आवरण को चीर कर वे प्रयत्न करते हैं किसी को अपना सहारा देकर अपना सहारा बनाने का। यदि वह कोई व्यक्ति नहीं बन पाता तो भक्ति में तल्लीन होकर उस अज्ञात में लीन रहने का प्रयत्न उनका कितना सफल हो पाता है, इसी का चित्रण है इस उपन्यास में। लेखक ने कथानक में केवल वही क्षण चुने हैं जो अकेलेपन के क्षणों में किन्हीं प्रतीकों को देखकर स्मरण हो आए थे साधुराम व शांति को। दिनचर्या। खन्ना शहर की अनाज मंडी मुख्य सड़क के किनारे स्थित दुकानों की एक लंबी कतार, कोई बड़ी कोई छोटी, किसी में हजारों का व्यापार होता है तो कहीं सिर्फ एक दो का, कहीं बहुत सरगर्मी रहती है, हर समय भाव तोल होता रहता है तो कहीं मालिक दुकान की गद्दी पर अपने फुटकर ग्राहकों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा अपने मस्तिष्क में कुछ और नहीं तो अपने ही जीवन की कड़ियों को निरंतर जोड़ता तोड़ता रहता है। तेजी से आगे बढ़ते जमाने के पहियों के साथ वह अब चल नहीं पाता या फिर चलना ही नहीं चाहता। उस रफ्तार से जो अपने पराए में कुछ भेद ना करे, शोर ने दुनिया को किस कदर जकड़ रखा है उसे यह जानने की परवाह नहीं। अपनी ही कोई चिंता है उसके पास, जिसे वह दुनिया की ढेर सी चिंताओं के साथ मिलाना नहीं चाहता। अपनी छोटी सी दुनिया में खोकर ही शायद वही आनंद पा लेता है जो दूसरे हजारों लाखों के चक्कर में आठों पहर खोकर मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं, या शायद करते ही नहीं। तभी तो आगे बढ़ते जमाने के पहिए कहां किसे कुचले जा रहे हैं, किसकी उमंगों की हत्या हो गई है, किसकी दुनिया वीरान हो गई है, और कौन है जो आगे ही आगे भागे जा रहा है, ऊपर ही ऊपर उठकर मस्त हो गया है। ऐसा कुछ जानने की, अपनी राह पर चलते हुए दूसरे किसी की कुछ बात जानने की शायद उसकी लालसा नहीं। वह योजनाएं नहीं बनाता, आकाश कुसुम तोड़ लाने के सपने नहीं लेता। उसने अपना चैन कहीं किसी ताक पर नहीं रख छोड़ा। उसके जीवन में शांति है, अपना छोटा सा संसार है उसका। उसकी देखभाल इतने से ही हो जाती है, तब और चिंता क्या। इस मंडी में है ऐसा ही एक दुकानदार साधुराम, 70 बरस का बूढ़ा। हड्डियों में उसकी अब दम नहीं रहा, आंखों की रोशनी इतनी कम कि जरा सा अंधेरा पड़ते ही टटोल टटोल कर चलना पड़ता है। मुंह में उसके दांत नहीं, चेहरे पर अनेक झुर्रियां हैं और बाईं बाजू का स्थान पूर्णतया रिक्त, जिसे देखकर खाली क्षणों में अक्सर उसे अपना कब का बीत चुका बचपन स्मरण हो आता है। ऐसा है वह, लेकिन तब भी जुटा हुआ है अपने काम में, कुछ कर रहा है अभी तक इतना कि उसका अपना छोटा सा संसार किसी दूसरे पर बोझ नहीं। बाबा, किसी ग्राहक का स्वर है यह। तल्लीनता भंग हुई उसकी और पूछा शांत भाव से ही, क्या चाहिए बेटा? एक चक्की नहाने का साबुन। गद्दी से उठकर साधुराम ने उसे साबुन थमा दिया। ग्राहक पैसे देकर चला गया। वह पुनः अपनी गद्दी पर आकर बैठ गया। तभी दूसरे ग्राहक ने दुकान में प्रवेश किया और पूछा, बाबा घी होगा? नहीं बेटा, घी नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रहा, न जाने क्या हो रहा है, खपत के हिसाब से माल नहीं। ग्राहक के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव है। जो भी हो रहा है बेटा, शायद इसी में कुछ भला हो, साधुराम के स्वर में स्थिरता है। इसमें क्या भला होगा बाबा, हर चीज को तरसना पड़ रहा है, शायद समय शीघ्र ही आएगा जब हर चीज अपनी दुर्लभता के कारण आम आदमी से दूर हो जाएगी, हम जैसे छूत के रोगी बन जाएंगे। चलो छोड़ो बाबा, चावल है क्या? ग्राहक ने दूसरा प्रश्न किया। है, बासमती है। कैसे दिए? 6 रुपए किलो। महंगे बता रहे हो, ठीक ठीक लगाओ, बाजार भाव है बेटा, साधुराम ने नम्रता पूर्वक कहा। वह तो नाम का होता है, 5 लगाओ। नहीं, चाहो तो लो, 6 ही लगेंगे। 5.5 लगाओ तो आधा किलो दे दो। नहीं, उसी नम्रता से साधुराम ने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही ग्राहक जाने के लिए मुड़ा कि साधुराम के मुख से निकल गया, अच्छा ले जाओ, लेकिन बेटा सच बात ये है कि 5.5 लगाकर तो मेरा घर भी नहीं पूरा पड़ता। खैर, तुम्हें नाराज नहीं करना मुझे। ग्राहक ने चावल लिए और पैसे देकर चलता बना। साधुराम दुकान पर फिर अकेला रह गया। चुपचाप सामने की ओर आंखें टिकाकर कुछ सोचने लगा। ग्राहक के होते उसके मुख पर जो सामान्य भाव थे, वे धीरे धीरे छिपने लगे। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क अपने विचारों की गहराई में उतरने लगा। उसकी आंखों में बहुत भीतर से एक नया भाव उमड़ आया। कोई ग्राहक यदि देखता तो उसे आश्चर्य होता। दुकान पर बैठे साधुराम की आंखों में निरीह भाव उमड़ आए थे, एक प्यास सी उभर आई थी। मुखमंडल भाव विहीन होने लगा था और कहीं से उस पर निराशा उभर आई थी। ऐसा क्या है यहां जिसका आभास पाकर मन एकाएक बदल जाता है? ये आगे बढ़ता जीवन, आता बीतता हर क्षण सभी तो सामान्य जान पड़ता है। जो कुछ भी घटित होता है जीवन में, चर्या समझकर अपना लेते हैं और आगे की ओर देखने लगते हैं। निरंतर आगे देखना शायद मन का गुण है। वह सोचता रहता है कुछ ना कुछ निरंतर। जीवन क्रम में सब कुछ इस तरह घुला मिला हुआ है कि कभी महसूस नहीं होता कुछ कहीं किसी ने भीतर नया सोचा है। नया स्वयं अपने लिए तो कहीं भी नया नहीं, अपने अनुभव कल किसी की प्रेरणा बनते हैं और फिर जन्म होता है एक नए अनुभवी का। यूं ही एक चक्र चलता है, तब नया किसे प्रतीत होगा। चर्या तो स्वयं ही बन जाती है सीढ़ी दर सीढ़ी विकास के साथ। ऐसे ही में मन जब भटक कर कहीं और चला जाता है, तब आने वाला हर क्षण सर्वथा नवीन जान पड़ता है। और तभी तो मन की यह भटकन जिंदगी के आम शब्दों के भाव भुला देती है। तभी तो दूर कहीं से घंटे के झंझनाते स्वर के साथ उठ रही राम नाम सत्य है कि आवाज ने उसे चौंका दिया। शायद अविश्वसनीय जान पड़े ये शब्द उसे। झट से उठ बैठा, झांक कर दुकान से बाहर सामने सड़क की दाहिनी ओर दृष्टि डाली। देखी एक अर्थी सफेद कपड़े में लिपटी किसी की आंख का तारा डूबा। एक भय की लहर उसके संपूर्ण अस्तित्व को झकझोर गई। घंटे पर पड़ती हथौड़े की चोट उसे अपने मस्तिष्क पर पड़ती प्रतीत हुई। एकाएक उसे अपना बदन टूटता महसूस हुआ। दूर कहीं उसकी आंखें प्रत्यक्ष में जहां देख भी ना सकती हूं, एक यादों का बवंडर उठता महसूस हो रहा था उसे। आगे आगे रोता बिलखता साधु राम, उसके पीछे एक अर्थी चार आदमियों के कंधों पर लदी और पीछे चंद लोगों का शोकपूर्ण समूह गर्दन झुकाए चलता। एक यही तो ऐसी निष्ठुर घड़ी है जो अक्सर उसे याद हो आती है। एक फूल रूठकर किसी और के मन को महकाने लगा और दूसरा ऐसी ही एक अर्थी में लदकर कहीं दूर चला गया, जहां शायद साधुराम समय आने से पहले पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन यह मौत शब्द की झलक उसके मानस पटल से अपनी छाया हटाती ही नहीं। जैसे कोई हथौड़े की मार जैसे चिल्लाता प्रतीत होता है, मौत मौत, और उसे महसूस होता है हर कोई निष्क्रिय हो गया है, समय रुक गया है। दूर उसकी आंखें देखती हैं किसी आकृति को धुंध में विलीन होते, कोई हंसता खेलता जीवन अपनी मां की गोद में सिर रखे निर्जीव होते। एक शून्य काल की झलक जैसे उसकी ठहरी आंखों में घूमने लगती है। दुकान के बिल्कुल सामने चार व्यक्तियों के कंधों पर लदी एक अर्थी और उसके पीछे 20-25 व्यक्ति राम नाम सत्य है कहते दृष्टिगत हो रहे थे। साधुराम दुकान की गद्दी पर बैठा चुपचाप एक टक उस अर्थी को जाते देख रहा था। उसकी शांत उदास दृष्टि भय की चोट खाने के बाद अब मानस पटल पर यत्र तत्र बिखरे शब्दों को चुन रही थी और वे शब्द एक रूप होकर उसके कानों में गूंज रहे थे। जबकि तराजू के एक पलड़े में वह स्वयं बैठा था और दूसरे पलड़े में उसे मौत बैठी दिख रही थी और उसकी शांत उदास दृष्टि देख रही थी कि कौन भारी है, कौन वह की मौत। और एक गूंज सी उठती प्रतीत हुई उसे, मौत। एक क्षण के लिए कांप उठा उसका संपूर्ण अस्तित्व। मरने की बात पर जब जब वह डरता है, राजा की मोटर के पहियों से कुचली वह डरावनी सूरत उसे याद आकर एक सच्चाई का एहसास करवाती है। 2 मिनट पहले उससे हंसते हुए बतियाकर जो राजा गया था, वह लौट कर फिर हंस नहीं सका। वह न पिता को बाबूजी कह सका, न मां को मां। एक निर्जीव सा शरीर लोटा था, मुंह के चिथड़े उड़े हुए थे जिसके। और तब साधुराम रो भी ना सका था, जड़ हो गया था। और शांति वह दो दिन तो आंखें भी ना खोल सकी थी। दोनों की जड़ता टूटी थी। सतीश को देखकर राजा नहीं रहा, वह तो है। वह दोनों जब नन्हे नन्हे बालक थे, आंगन में उनकी किलकारियां नए नए स्वप्न महल बनाती गूंजती थी। कोमल हंसी उनकी आंगन में गूंजती, कभी इस बात का एहसास भी न करवाती थी कि कभी अकेलापन भी आएगा उनके जीवन में। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। शायद राजा इस दुनिया को छोड़कर चला गया और सतीश, जो अब उनका एकमात्र सहारा रह गया था, समय के साथ साथ अपने विचार प्रवाह को बदलता गया। अपने हम उम्र भाई राजा की मौत के समय उसने प्रण किया था कि वह अपने माँ बाप को कभी अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन समय के थोड़ा आगे बढ़ते ही उसी सतीश ने अपने माँ बाप की आशाओं आकांक्षाओं के सभी महल गिराने शुरू कर दिए थे। माँ बाप से उसे अपना रिश्ता केवल भावनाओं का प्रतीत हुआ। शायद वह सोचने लगा था कि उसके माँ बाप उसके व्यवहारिक जीवन में कहीं स्थान नहीं रखते, केवल उसकी भावनाएं जब जब ऊपर उठ आती, माँ बाप के प्रति एक कर्तव्य का उसे एहसास होने लगता। उसी के वशीभूत होकर वह उनसे बार बार आग्रह करता अपने बड़े शहर में आकर बस जाने का, अपने उस छोटे से शहर को भूल जाने का, जिसमें पलकर न केवल साधु राम बड़ा हुआ, बल्कि जहां साधु राम व शांति के सभी स्वप्न उभरे, खिले, फूले, और जहां से निकलकर सतीश बड़े शहर के योग्य बना। लेकिन सतीश को क्या मालूम था कि एक घर जो बहुत पुराना हो गया हो, जकड़ लेता है व्यक्ति को अपनी हर दीवार के घेरे में। घर की हर दीवार, सफेदी की हर परत पर कई यादों के चित्र लिए होती है। घर, गली, मोहल्ले में हर कहीं कोई अपना छिपा महसूस होता है, जो रोकता है मन में उभर उभर कर दूर जाने से। और जब जब कोई हठीला प्रयत्न करता है, भावनाओं की एक सर्द लहर उसके अस्तित्व को झकझोर जाती है। लेकिन सतीश इस बात को नहीं जानता था, इसीलिए उसकी विचारधारा भला अपनी इच्छा के विपरीत कैसे बहती। बहुत सी आशाएं जब टूट गई, सभी इच्छाओं का उनकी जब गला घोंट दिया गया, तो साधुराम शांत ना रह सका। फूट पड़ा उसके मन में कई बरसों से पलता आक्रोश। भावनाएं दब गई उसके नीचे और अहम की एक दीवार चुन दी गई बाप बेटे के बीच, माँ और उसकी ममता के बीच। लेकिन माँ बेचारी निरंतर चेष्टा करती है उचक उचक कर दीवार के उस पार देखने की, लेकिन अविरल बहती आंसुओं की धार अब तक नहीं तोड़ पाई उसको। साधुराम का निश्चय भी अब डिग गया है। रोता है वह भी कभी कभी, लेकिन आंसुओं का कोई मूल्य नहीं रहा। वह पावन भूमि में मिलकर भी असफल, असफल स्वयं से ही उसका एक प्रश्न। इन प्रश्नों के दौर में वह जो कुछ भी सोच रहा था, वह सब पुराने दर्दों के परिणाम स्वरूप था। ना उसे वह दर्द मिलते, ना उसकी आकांक्षाओं पर कुठाराघात होता, और ना वह आज अर्थी को देखकर इतना सोचता। मरने पर चाहिए अर्थी, अर्थी के लिए चाहिए कंधा किसी अपने का। चिता में अग्नि भी तो अपना ही लगाता है। मैं मर जाऊं, मेरा अपना ऐसा कौन जो मुझे कंधा दे सके, मेरी चिता को अग्नि दे सके। मेरा अपना, मेरा सतीश, मेरा, लेकिन कहां है वह? मुझसे दूर अपनी नई दुनिया में लीन, चक्षु क्षेत्र में जमे बर्फ के टुकड़े आंतरिक उष्मा का आभास पाकर पिघलने लगे। पानी धारा बनकर प्रवाहित हो उठा। मन पहले से ही रो रहा था, आंखें भी रोने लगी। भूल चुका था कि वह इस समय दुकान पर बैठा है, बहती आंखों से छत को घूर रहा था। तभी एक स्वर, बाबा, दुकान पर आए एक ग्राहक ने उसे पुकारा। उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। आंखों की नमी आस्तीन से साफ कर उसने ग्राहक की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। ग्राहक ने उसकी आंखों से निकलते आंसू देख लिए थे। वह साधु राम की ओर दयापूर्ण दृष्टि से देख रहा था। क्या हुआ बाबा, रो क्यों रहे थे? ग्राहक का स्वर भी सहानुभूतिपूर्ण था। कुछ भी तो नहीं बेटा, बस यूं ही बह निकले थे। एकांत में अक्सर मनुष्य हंस रो देता है। खैर छोड़ो इसे, तुम्हें क्या चाहिए? ग्राहक ने और कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपनी आवश्यकता की वस्तु साधुराम को बताई। साधुराम ने गद्दी से उठकर इच्छित वस्तु उसे थमाकर पैसे ले लिए। ग्राहक चला गया। ग्राहक के जाते ही साधुराम दुकान पर फिर से अकेला रह गया। मन उसका पुनः विचार लोक में जा पहुंचा। साधुराम ने कभी सोचा भी ना था कि इस बूढ़ी उम्र में भी उसे दुकान करनी पड़ेगी। सतीश के शिक्षण काल में उसने अपने सुंदर भविष्य की कल्पनाएं की थी। अक्सर वह शांति से कहा करता था, बहुत कुछ देखा इस जीवन में, शांति बस अब मुक्ति मिलेगी झंझटों से, कठिनाइयों से किनारा कर शीघ्र ही हम चैन की वंशी बजाएंगे। शांति, सतीश अगले ही वर्ष इंजीनियर बन जाएगा। मगर उसका अतीत जब भविष्य बनकर उसके वर्तमान में आ खड़ा हुआ तो उसे निराश हो जाना पड़ा। उसने स्वयं को दुर्भाग्यशाली कह दिया। साधुराम स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझता है, स्वयं को दुर्भाग्यशाली कहता है, केवल इसलिए कि उसका आत्मज सतीश उसे विस्मृत किए बैठा है। दुर्भाग्यशाली साधुराम के मुख से निकला और अश्रुकण पुनः प्रवाहित हो उठे। सतीश का चित्र उसकी आंखों के सम्मुख तैर रहा था। उसी को निहारते साधुराम आंसू बहा रहा था। समय का उसे पता ही ना चला। आंसू कब थम गए उसे यह भी ज्ञात नहीं था। वह गुमसुम बैठा था। मन उसका कहीं बहुत पीछे जाकर उसके अतीत में बैठा था। उस निष्ठुर मन को क्या मालूम कि उसका साधुराम दुकान पर कैसे बैठा है, क्या कर रहा है? अपनी व्यथा में भला कौन दूसरे की सुन सकता है? अपना दर्द बांटने की पड़ी है मन को, साधुराम का दर्द लेने की नहीं। मानस पटल पर कुछ दृश्य उभरने लगे थे। कुछ खुशियां थी जिनकी झलक देखने को अब वह तरसता है। कुछ अरमान थे जो तब पूरे हुए थे, लेकिन त्योहार से मानकर बिताते उन दिनों की छाया अभी हटी भी ना थी कि एकाएक कच्चे पुल की भांति सब कुछ दहना शुरू हो गया। लेकिन एक याद जो अक्सर मन में घुमड़ आती है, उससे तो वह पीछा नहीं छुड़ा पाता। छुड़ाना भी तो नहीं चाहता, बहुत लगाव है उन क्षणों से उसे। उदासी में वे क्षण स्मरण हो आते हैं। ऐसा ही मन आज हुआ पड़ा था उसको दूर 15 बरस पहले के कुछ क्षण स्मरण हो आए थे उसे। दोपहर के 2 बज रहे थे। दोपहर का खाना समाप्त कर वह दुकान की गद्दी पर लेटा आराम कर रहा था। इस वक्त कोई भूला भटका ग्राहक ही दुकान पर आता है, इसीलिए शायद बेफिक्र हो उसने आंखें बंद कर रखी थी। तभी तार वाले ने आकर उसे पूछा, ए बाबा, साधुराम कपूर तुम्हारा ही नाम है क्या? अपना नाम सुनकर उसने झट से आंखें खोली, तार वाले को सामने देखकर उठते हुए बोला, हाँ मेरा ही नाम है, कहो क्या बात है? तार है तुम्हारे नाम दिल्ली से, डाकिये ने कहा। तार किसने भेजी है? और तभी उसे ध्यान हो आया, अरे सतीश की होगी, नौकरी लग गई होगी उसकी। क्यों, जरा पढ़ो भैया, क्या लिखा है उसने? साधुराम का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तभी डाकिये ने उससे तार पढ़कर कहा, हाँ बाबा, तुम्हारा बेटा अफसर लग गया है दिल्ली में। खबर सुनकर साधुराम का संपूर्ण अस्तित्व कांपने लगा। हाँ हाँ, अफसर ही लगा होगा, अरे भगवान तुझे भी ऐसा दिन बार बार दिखाए। तूने आज मुझे बहुत बड़ी खबर सुनाई है, मेरे सारे अरमान इसी खबर पर टिके थे। हाँ हाँ बाबा, बेटे की सफलता पर किसे खुशी नहीं होती, माँ बाप के अरमानों को पूरा करता है बेटा। मुंह तो मीठा कराओ मेरा बाबा, डाकिये ने साधुराम की खुशी में हिस्सा लेते हुए कहा। हाँ हाँ जरूर, मुंह अपना भी मीठा करो और अपने बच्चों का भी कराओ, ये लो। यह कहते हुए साधुराम ने खुशी से कपकपाते हाथ से गल्ले में से 2 रुपए का नोट निकालकर उसे थमा दिया। नोट लेकर सलाम करता हुआ तार वाला दुकान से उतर गया। साधुराम इतना खुश था कि और नहीं बैठा जा रहा था उससे दुकान पर। खुशी के मारे वह पगला गया था। जल्दी जल्दी उसने दुकान का सामान समेटा और दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ा। राह चलते उसे जो भी जानकार मिलता स्वयं उसे रोक कर कहता, सुनो भाई, मेरा बेटा बड़ा अफसर लग गया है दिल्ली में। हाँ अभी अभी तार आई है उसकी, ये देखो। और वह हाथ में पकड़ी तार उसे दिखाता, बधाई हो, अब मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर आना। और तेजी से साधुराम घर की ओर बढ़ने लगता। गली के किनारे से ही उसने शांति को पुकारना शुरू कर दिया, शांति ओ शांति, सुनती हो, देखो सतीश की तार आई है, नौकरी लग गई है उसकी। और शांति के बाहर निकलने से पहले मोहल्ले भर के लोग बाहर निकल आए, सभी बधाई देने लगे साधुराम व शांति को। साधुराम की खुशी जैसे उसकी जुबान शांत ही नहीं कर पा रही थी, अरे अफसर लगा है अफसर। और तब तक शांति बाजार से मिठाई मंगवा चुकी थी पड़ोस के एक लड़के को भेजकर। उस रात साधुराम की आंख लगने को नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपने घर की दीवारों को घूर रहा था। दीवारों का पलस्तर झड़ रहा था, सफेदी पर कालिक जमी हुई थी। आज उसे अपने घर का यह रूप अखर रहा था, अफसर के बाप का घर और ऐसा। हूँ, आज से पहले यही उसे भाता था। इन दीवारों की हालत देखकर वह अपने संघर्षमयी क्षणों की याद किया करता था। सतीश को ऊंचा बनाने के लिए ही तो यह पलस्तर ठीक नहीं हो पाया, 10 बरस सफेदी नहीं हो पाई। छुट्टी के दिनों में सतीश घर आने पर कहा करता था, बाबूजी, इन दीवारों का पलस्तर
ठीक करवा लीजिए, अब बहुत खराब लगता है, सफेदी भी कितनी खराब हो चुकी है। तब साधु राम उससे कहा करता, तुम ही करवाना इसे ठीक अपनी नौकरी लगने पर, अभी नहीं जरूरत इसकी, तुम अफसर बन जाओ, यह घर भी अफसर जैसा बनवा लेना। तब सतीश कहा करता, तब बाबूजी बंगले में रहेंगे, इस घर में नहीं, खुलकर हवा भी नहीं आती यहाँ। सतीश भी अपने भविष्य की सुखद कल्पनाएं करने लगा था। ऐसे में, ऐसा मत कहो बेटा, इस घर को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं, और तुम्हारा भी तो बचपन इस घर में बीता है। बोलता नहीं था उस समय सतीश, चुप हो जाता था। वह अपने पिता के सामने अधिक मुंह नहीं चलाता था, जानता था उसके पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए। आज साधुराम वही सोच रहा था, इस घर को नया बनाने का। शांति को संबोधित करते हुए बोला, शांति सो गई क्या? शांति अभी अर्ध निद्रा में थी, उसने सुना साधुराम उसे पुकार रहा है, लेकिन नींद की खुमारी में ही बोली, क्या है? अब सतीश को कहूंगा इस घर की काया पलट दे, दीवारों का पलस्तर भी करवा दे और रंग रोगन भी, देखो ना कितना गंदला हुआ पड़ा है सारा घर। कुछ क्षण चुपचाप देखता रहा छत की तरफ, फिर बोला, पर अब सारा घर चमक उठेगा। लेकिन शांति थी कि दो शब्द सुन पाई थी और चार उसके कान में ही ना पड़े थे। वह हूं हां कह पासा पलटकर सोने की चेष्टा करने लगी। कुछ क्षण पश्चात एक नई बात उठी उसके मन में, तब बोला, और शांति अब तुम कुछ गहने भी बनवा लेना, खाली हाथ बहुत बुरा लगता है जब किसी के घर आना जाना पड़ता है, कह दूंगा सतीश से सबसे पहले यही काम करे, तुमने उसकी पढ़ाई के लिए ही तो सब कुछ बेच डाला। और फिर शांति भी केवल हूं है कहकर कहीं और खो गई। और हां शांति, हम उसकी पहली तनख्वाह से तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, हरिद्वार काशी। और तब तक शांति सब समझ गई थी, जो कुछ अब तक साधुराम कल्पना करके उससे कह रहा था। बिस्तर पर बैठकर बोली, क्या कुछ करोगे तुम उसकी तनख्वाह से? घर भी बनवा लोगे, मेरे गहने भी खरीदोगे और तीर्थ पर भी जाओगे। तब साधुराम ने कहा, अरे तुम क्या समझती हो, क्या 100-200 की नौकरी लगी है उसकी जो इतना कुछ ना कर सकूंगा? जानती हो 1000-1200 रुपए तनख्वाह होगी उसकी, सब कुछ हो जाएगा आसानी से, तुम देखती रहो। महीना खुशी खुशी बीत गया। दोनों बड़ी उत्सुकता से उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब सतीश अपनी तनख्वाह उन्हें भेजता और वे तीर्थ यात्रा पर निकलते। अपने इस इरादे के विषय में साधुराम उसे पहले ही लिख चुका था, लेकिन उसने तनख्वाह या पैसों के विषय में अपने पत्र में कोई जिक्र नहीं किया था। उसे तो विश्वास था कि सतीश तनख्वाह मिलते ही अपने खर्चे के लिए रुपए रखकर बाकी पैसे उन्हें भेज देगा। महीने से 10 दिन ऊपर हो चुके थे, उसका ना तो मनी ऑर्डर आया और ना कोई चिट्ठी। साधुराम व शांति दोनों चिंता मग्न हो उठे। रात के समय साधुराम ने खाना खा चुकने के उपरांत आंगन में बिछी खाट पर बैठते हुए शांति से कहा, शांति न जाने क्या बात है, ना तो कोई चिट्ठी आई और ना और कुछ। साधुराम के स्वर में उदासी थी, साथ ही न जाने क्यों उसे सतीश के प्रति निराशा सी महसूस हो रही थी। तब शांति ने कहा, भगवान भला करे कहीं बीमार ना हो गया हो। शांति ने अपनी आशंका प्रकट की, बीमार हो गया होता तो खबर जरूर कर देता, जब पढ़ता था तब भी तो एक दफा बीमार पड़ने पर खबर करवा दी थी उसने। साधुराम ने अपनी बात कही। भगवान जाने कल का दिन और देख लेना, फिर तार दे देना, शांति ने कहकर बत्ती बंद कर दी और दोनों सोने की चेष्टा करने लगे। अगले दिन शांति को अपना हृदय न जाने क्यों धड़कता महसूस हो रहा था। कहीं कोई डर उसके भीतर उभर कर उसे डरा रहा था। बुरी बुरी बातें उसके मस्तिष्क में घूम रही थी। दोपहर 12 बजे के लगभग दरवाजे पर थपथपाहट हुई और पट से दरवाजे के खुलते ही एक पत्र अंदर आ गिरा। डाकिया था बाहर। शांति तेजी से पत्र की ओर लपकी, खोलकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। सतीश का ही पत्र था, उसके ही नाम लिखा था। मेरी प्यारी माँ, सादर प्रणाम। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था। कुछ कहना चाहता था तुमसे, लेकिन हिचक उठता था और मेरी कलम रुक जाती थी। लिखने की सारी चाह कुछ अटपटा सोचकर दब सी जाती थी, लेकिन फिर सोचा ऐसा कब तक करूंगा। और अब दिलासा दिया है मैंने स्वयं को कई दिनों के उपरांत। हां मां, तुम्हारे और बाबूजी के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं और मेरी किसी अच्छी सी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो। और मां, आपका वह सपना सच हो गया, मैं बड़ा अफसर बन गया। और हां मां, मैं जो खुशी तुम्हें लिख रहा हूं उससे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपने इरादे के विषय में आपको पहले नहीं लिख सका और ना ही आपकी इजाजत ले सका। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे बिना एक क्षण बर्बाद किए यह फैसला करना पड़ा, जिसे शायद आप दोनों करते तो शायद मुझे और खुशी होती। हां मां, मैंने पिछले मंगलवार को शादी कर ली है अपने चीफ साहब की लड़की के साथ। और मैं इस विषय में आपको क्या लिखूं, यह सब भी बहुत डर डर कर लिख रहा हूं, लेकिन मुझे आशा है आप नाराज ना होंगी और पत्र मिलते ही बाबूजी के साथ दिल्ली आ जाएंगे। बाबूजी को मेरा प्रणाम कहें। तुम्हारा बेटा सतीश। सतीश का पत्र पढ़कर शांति को लगा उसके आसपास पड़ी हर चीज घूमने लगी है। उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना भी दुर्भर महसूस होने लगा। मस्तिष्क उसे एकाएक निष्क्रिय होता जान पड़ा। कुछ सोचने की शक्ति जैसे उसमें से समाप्त हो गई। मूक प्राणी की भांति बैठी शून्य में ताक रही थी। ये क्या हो गया, ये उसने एकाएक क्या कर डाला। हमारे सभी अरमान इन दो शब्दों की चिट्ठी ने कहीं दूर उड़ाकर धूल में मिला दिए। कुछ अपना नहीं रहा ऐसा मुझे अब लगता है। दिन भर वह यूं ही गुमसुम बैठी रही। खाना खा लेने का भी उसका जी ना हुआ। आंसू आ आकर उसके गालों को सहलाते रहे और कभी जैसे कहीं कुछ भी शेष ना बचा हो। एक बावली की भांति शांति स्वयं से ही बतियाने लगती। ऐसे ही शाम हो गई। 7 बजते ही साधुराम दुकान से घर लौट आया। घर में आज उसे अन्य दिनों से अलग एक अजीब सा सूनापन प्रतीत हुआ। शांति ने बत्ती भी नहीं जलाई थी। भीतर बाहर हर कहीं अंधेरा था। किसी अज्ञात आशंका से उसका हृदय धड़कने लगा। शांति कहां हो, भीतर आते ही साधुराम ने कहा, अंधेरा क्यों कर रखा है। शांति को जैसे अपनी सुध लौटी, निराशा से डूबे स्वर में बोली, जिनका जीवन ही अंधेरे में डूब गया हो उन्हें रोशनी कर क्या मिलेगा। ये तुम क्या कह रही हो शांति, कैसी बातें कर रही हो। साधुराम कुछ घबरा उठा। जल्दी से आगे बढ़कर उसने बत्ती जला दी। दोबारा पूछा, क्या बात है। सतीश की चिट्ठी आई है। आगे कुछ ना बोली, जैसे साधुराम अंदाज लगा लेगा कि उसने क्या लिखा है। क्या लिखा है उसने, साधुराम ने उत्सुकतावश पूछा। प्रत्युत्तर में दो आंसू टपक पड़े शांति की आंखों से। तुम रो क्यों रही हो शांति, मुझे बताओ चिट्ठी कहां है। साधुराम की घबराहट पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। शांति ने उसे अपने हाथ में पकड़ी चिट्ठी थमा दी। साधुराम एक ही सांस में सब पढ़ गया, जैसे कुछ समझ आया कुछ नहीं। संशय भरे स्वर में बोला, क्या लिखता है, शादी कर ले शांति। उल्टे उसने शांति से पूछा, ये क्या लिखा है उसने, कहीं पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा बेटा, कहीं शादी ऐसे भी होती है। और तब शांति फूट फूट कर रोने लगी थी। साधुराम तब कुछ और न बोल सका, चुपचाप पत्र पर छपे अक्षरों को घूर रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो उसका ऐसा करने से वे अपना अर्थ बदल लेंगे। एकाएक वह जोर से हंसने लगा। तब शांति की रुलाई रुक गई। वह आश्चर्यचकित दृष्टि से अपने पति की ओर देखने लगी। शांति, मैं भी कितना पागल हूँ जो समझा नहीं कि सतीश की शादी हुई है। अरे शादी ही तो हुई है, कोई बड़ी बात है क्या, इतना बड़ा अवसर है, शादी तो होनी ही थी मेरे बेटे की। और हंसते हंसते एकाएक उसकी रुलाई फूट पड़ी। लगभग चीखता हुआ वह शांति से बोला, बस यही मिलना था शांति हमें फल, एक यही तो ऐसी खुशी थी जिसके लिए सोचता था मैं जी भर के नाचूंगा। शांति की ओर देखा उसने, उसकी आंखों से टप टप कर आंसू फिर बहने लगे थे। शांति, किस लिए यह जीवन मिला मुझको, अपने अरमानों का गला घुटते देखने के लिए। ऐसे में घर का वातावरण बहुत डरावना हो चुका था, आसपास का शोर जैसे थमा पड़ा हो, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। आज भूल गए थे कि पिछले 10 दिनों से वह निरंतर उसके मनी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। मनी ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन उनके अरमानों का गला घोंटने का ऑर्डर जैसे इस पत्र के माध्यम से किसी ने भेज दिया हो। एकाएक उसकी तंद्रा भंग हुई। एकाएक उसे महसूस हुआ वह सोचे ही जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं है। तब मन उसका लौट आया अपने वर्तमान में। शाम हो चुकी थी, अर्थी न जाने कहां जा चुकी थी। एकाएक दुकानों पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया था। वह अपने एक हाथ से उनकी आवश्यकता की वस्तुएं जुटाने लगा। साधुराम अपने एक हाथ से जिस तेजी से कार्य करता था वह ग्राहकों के लिए कौतूहल का विषय था। लेकिन साधुराम जानता था कि व्यक्ति में लग्न भाव हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। शाम 7 बजते ही दुकान बंद कर वह घर की ओर चल पड़ा।